बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तहज़न, सेशन नंबर 20। आज इंशाल्लाह सेशन का टॉपिक है हाउ टू यूज़ टुडे, यानि आज का बेहतरीन इस्तेमाल। तो चंद दिनों से जो लोग हयाल अल-फलाह में हैं और हिट एंड फिट मोमिनात में हैं, वो देख रहे होंगे कि चंद सीनियर मेंबर्स जो हैं वो दे कम आउट विद एन आइडिया। बड़े एक प्लेजेंट सा एक चेंज मैं ख़ुद भी देख रही हूँ। इनफैक्ट मेरा जहन एकदम से इतना खुल गया है शायद इन सेशंस की वजह से, क्योंकि वर्कशॉप देना एक बात है, लेकिन एक्चुअली एक चीज़ को प्लान करना और उसको फिर औरों के साथ शेयर करना, इसको शेयरिंग योर ड्रीम्स कहते हैं या आइडिया शेयरिंग कहते हैं, या हम लोग जो मैं पढ़ाती हूँ उसमें हम इसको विश क्राफ्ट कहते हैं। यानी अगर आपकी एक विश है तो आप कैसे उसको एक्सिक्यूट करें, आप कैसे उसको प्रैक्टिकल बनाएं। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ख्वाहिश ना तमाम जो है वो एक खुश और हशाश बशाश ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हम यही सोचते रहते हैं कि उफ़ल्ला मैंने ये मेरे विश की थी और वो नहीं पूरी हुई, और मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, हम सारा वक्त बैठ के यही सोचते रहते हैं, और जो चीज़ें हमारे पास होती हैं ना हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं और ना हम उन्हें इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि इंसान की नेचर ये है कि जो उसके पास नहीं होता वो उसको बहुत ज़्यादा पिंच करता है। जैसे हज़रत आदम को भी शैतान ने क्या झांसा दिया था, कुरान में सूरह आराफ में बड़ा खूबसूरत एक अकाउंट है, एक कहानी है जो हमें अपने बच्चों को सुनानी चाहिए, कि शैतान ने हज़रत आदम को कहा था कि देखो तुम्हें ना मैं वो एक पौधा बताता हूँ, अगर तुमने वो खा लिया ना तो तुम फरिश्ते बन जाओगे। तो हज़रत आदम यानि जो हम इंसान हैं, हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हमने ये नहीं सोचा कि अल्लाह ने तो फरिश्तों को हमें सजदा कराया, हमारे सामने फरिश्तों ने सजदा किया है, हमने कहा कि ओहो अच्छा मैं फरिश्ता तो नहीं हूँ तो चलो मैं वो खा लेता हूँ कि मैं फरिश्ता बन जाऊँ, यानी मैं कोई ऐसी चीज़ बन जाऊँ जो मैं नहीं हूँ, जो मैं कुदरती तौर पर नहीं हूँ। तो जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है वो हमें सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, ये हमारी नेचर है। और उस चीज़ को हासिल करने के लिए सबसे पहले तो अपना माइंडसेट चेंज करना है। माइंडसेट ये है कि उसको मुमकिनात में गिनना है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैंने जो आपको यहाँ पे एग्जांपल दी है वो एक एकेडमी की है, क्योंकि दो बल्कि तीन बहुत सीनियर मेंबर्स ने जो शुरू से हयाल अल-फलाह के साथ हैं, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि हम एक ऐसा काम करें। या फिर दो बहुत सीनियर मेंबर्स हैं, वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारी मेंबर्स हैं, उन्होंने एक किताब लिखने का इरादा किया है कि हम एक किताब लिखते हैं। तो देखें, एक कॉलेज ग्रेजुएट लड़की या एक हाउसवाइफ, मदर ऑफ चिल्ड्रन, काफ़ी सोशली इन्वॉल्व्ड ख्वातीन हैं ये, और उन्होंने ओवर द पैसेज ऑफ टाइम दे हैव कम अप विद द आइडिया दैट दे वांट टू राइट अ बुक, एंड इट्स एन एक्सट्रीमली ओरिजिनल आइडिया, बहुत खूबसूरत आइडिया है। और मेरे ख्याल में जो लीव अ लेगेसी वाली बात है कि आप दुनिया में एक ऐसी चीज़ छोड़ के जाएं जो आपके बाद लोगों को फ़ायदा दे और वो एक सदक़ा जारिया बने, उसमें बेहतरीन चीज़ किताब है। क्योंकि देखें, कुरान भी एक किताब है, सुन्नत भी हम तक किताबों के ज़रिए पहुँची है। तो किताब एक ऐसी चीज़ है कि एक बात जो लिख ली जाती है इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, इट विल रीच जहाँ आपकी इमेजिनेशन भी नहीं पहुँच सकती है, वो चीज़ वहाँ पहुँचेगी और लोग उसको देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। इसका एहसास मुझे एक दफ़ा हरम में मैं बैठी हुई थी और मेरे साथ एक खातून बैठी हुई, दो खवातीन बैठी हुई थी, जो जिनके किताबों के कवर पे इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ देखा मौदूदी, और एक किताब जो थी वो मलयालम में थी, जो एक साउथ इंडियन लैंग्वेज है, वो मौलाना मौदूदी की तफ़ीमुल कुरान जो है वो मलयालम में ट्रांसलेट हुई हुई थी, और एक दूसरी खातून जो थी वो मौलाना मौदूदी की तफ़ीमुल कुरान ही बांग्ला में, बांग्लादेश की ज़बान में ट्रांसलेट हुई हुई थी और वो पढ़ रही थी। और आप यकीन करें कि मेरे जिस्म पे रोंगटे खड़े हो गए, और मैं उनको देख रही थी और मैंने कहा कि मौलाना मौदूदी ने कभी सोचा होगा कि इस हरम में कितने लोग हैं और कितनी ज़बानें बोलने वाले लोग हैं, और उनमें से कितने लोगों के हाथ में उनकी तफ़ीमुल कुरान है जो उन लोगों की लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो इट वॉज़ रियली अ मोमेंट ऑफ रेवलेशन फॉर मी कि किताब जो है इट इज़ द बेस्ट लेगेसी दैट वी कैन लीव. वैसे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन किताब जो है उसे फिर ऑल्टर नहीं किया जा सकता, वो आपके ओरिजिनल क्रिस्टलाइज्ड आइडियाज़ होते हैं. तो मेरी बहुत मुबारकबाद उन लोगों को जिन्होंने किताब लिखने का सोचा है या जिन्होंने एक एकेडमी बनाने का सोचा है जिसके ज़रिए हम इसी तरह कनेक्ट हों और इसी तरह इकट्ठे रहें जैसे हम हयाल अल फलाह में अपना फ़ोन खोल के एकदम से एक दूसरे से बाखबर हो जाते हैं. तो मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल आपको एक एकेडमी की दी है और मैंने बहुत, ये तो एक बहुत ग्रॉस एग्ज़ाम्पल है, इसमें तो बहुत ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है, लेकिन मिसाल ये है कि जैसे मैं ये सोचूं कि 2020 जब शुरू होगा तो मेरे पास एक एकेडमी होगी जिसमें इस तरह के हम अच्छे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के कोर्सेज दिया करेंगे और हम उसमें अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखाया करेंगे, तो वो एकेडमी मैं कैसे बनाऊँगी. तो आपने ये एक एक्सरसाइज है जो है हाउ टू यूज़ टूडे. अब मैं 2020 सोच रही हूँ लेकिन 2020 में वो चीज़ हासिल करने के लिए मुझे आज क्या करना है, आज का दिन मैंने कैसे प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करना है कि मैं एक इंच अपने एक 10 मील के सफ़र में आगे बढ़ जाऊँ. और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कल जो है वो गुजर गया है, हम सिर्फ उस पर रिग्रेट कर सकते हैं और आने वाला कल जो है वो किसी ने नहीं देखा. तो हमारे हाथ में जो चीज़ है वो सिर्फ आज है और अगर हमने आज ज़ाया कर दिया तो इसका मतलब है कि हमने अपने रिग्रेट्स में मज़ीद इजाफा कर दिया और हम अपने फ्यूचर को मज़ीद हमने ख़राब कर दिया और कमज़ोर कर दिया क्योंकि हम आज का दिन ज़ाया कर चुके हैं. तो इसको, इसका बेस्ट इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है और इसको अलाइनमेंट कहते हैं. अलाइनमेंट से मुराद ये है कि जो चीज़ आप फ्यूचर में सोच रहे हैं, जैसे आप 2020 में कुछ सोच रहे हैं, तो आपके सारे काम जो हैं, जो आप आज अभी बैठ के जो काम कर रहे हैं, वो उस मिशन के साथ और उस विज़न के साथ लाइन में आ जाएं और इस तरह हो कि वो एक चीज़ दूसरे को सहारा दे रही हो, एक चीज़ दूसरे को पुश कर रही हो और उसको आगे बढ़ा रही हो, ना कि वो उसको, उसके ऊपर एक बोझ बन के उसे स्लो कर रही हो और ख़राब कर रही हो और आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो और आप नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लग के अपने उस मिशन से और भी दूर हट रहे हों. ठीक है जी, ये अलाइनमेंट है. अब ये अलाइनमेंट कैसे हासिल करनी है, मैंने आपको एक 2-3 फ़ोटोग्राफ्स की एक सीरीज़ में आपको भेज रही हूँ जिसमें, यानी एक सबसे पहले तो आप अपनी वो विज़न लिख दें जो आपने हासिल करनी है, शायद 1 साल बाद, शायद 2 साल बाद, शायद 5 साल बाद, जो भी विज़न आपने हासिल करनी है. फिर आप उसके बड़े बड़े कॉम्पोनेंट्स लिखें. जैसे एक एकेडमी है तो उसमें आपको एक बिल्डिंग चाहिए होती है, बिल्डिंग में आपको यूटिलिटीज़ चाहिए होती हैं, उसमें बिजली होनी चाहिए, उसमें गैस होनी चाहिए, उसमें पानी होना चाहिए. फिर आपको स्टाफ चाहिए होता है, आपको एक टीम चाहिए होती है जो आपकी वो एकेडमी आपके लिए चलाए और आपके वो अच्छे पार्टनर्स हों. फिर उस एकेडमी में आपने कुछ पढ़ाना है या उस एकेडमी में आपने कोई काम करना है, मसलन योगा सिखाना है, मसलन एक्सरसाइज एरोबिक की क्लासेस लेनी है, मसलन कुकिंग की क्लासेस लेनी है, मसलन दीन की क्लासेस लेनी है, या वहाँ पे एक काम करना है आपने, तो वो आपका सिलेबस होता है, वो आपका वो टास्क लिस्ट होती है जो आपने उस एकेडमी में करना होता है. फिर जब आप अपने ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो इस वक्त, यानी कि आज के दिन में बैठ के मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मैंने 10 कमरों की एक बिल्डिंग किराए पे लेनी है या मैंने 10 कमरों की एक बिल्डिंग बनानी है, मैं सोच भी नहीं सकती. अपना टोटल बैंक अकाउंट अगर मैं अपने सामने लाऊं तो मेरे पास ऐसे फंड्स नहीं हैं कि मैं ये काम कर सकूं. लेकिन मैं ये बड़े बड़े टास्क बग़ैर अपने प्रेजेंट रिसोर्सेज को सामने रखते हुए उनको नहीं सोचती, मैं ये बड़े बड़े टास्क लिख लेती हूँ. फिर मैं इन बड़े बड़े टास्क को छोटा करके मज़ीद डिवाइड करती हूँ. मैं कहती हूँ कि अच्छा, बिल्डिंग मैं बना तो नहीं सकती, वो तो करोड़ों का सौदा है, तो मैं एक बिल्डिंग रेंट कर लेती हूँ. तो मैं बिल्डिंग तो रेंटेड हो गई मेरी, मेरे जहन में एक गुत्थी सुलझ गई कि मेरी बिल्डिंग रेंट की होगी. फिर मेरी यूटिलिटीज़ हैं, फिर मुझे किस किस्म का स्टाफ चाहिए, मर्द चाहिए हैं, औरतें चाहिए हैं, एडमिन में लोग चाहिए, टीचिंग में चाहिए, सफाई करने वाले चाहिए, सिक्योरिटी का स्टाफ, ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जो मुझे चाहिए. फिर मैं कौन सा सिलेबस इस्तेमाल कर रही हूँ या मैं, मेरी टास्क लिस्ट जो है उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए. मुझे फर्नीचर चाहिए होगा, मुझे प्रिंटेड स्टेशनरी चाहिए होगी, मुझे उसकी कीमतें पता होनी चाहिए, मैं उसके फिर आगे यानी कि क्या मैं ये नॉलेज जो है ये मुझे नेट से मिल सकती है, मुझे और स्कूलों से मिल सकती है, मुझे दोस्तों से मिल सकती है, मेरे मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको मैं बुलाऊँ, ये चीज़ इस पूरे प्रोसेस को जब हम अलाइनमेंट कर रहे होते हैं ना, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। जैसे हम करते हैं ना अक्सर, जैसे एक मीटिंग होती है फैमिली की तो हम कहते हैं चलो यार प्लीज़ ब्रेनस्टॉर्म करो, मुझे समझ नहीं आ रही है। तो ब्रेनस्टॉर्म का मतलब ये है कि आप अपने जहन को बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं और आप फिर जो उस खुले जहन में जो आइडियाज़ आते हैं, जैसे कि एक मशहूर सेइंग है कि द ब्रेन इज़ लाइक अ पैराशूट एंड इफ़ इट इज़ नॉट ओपन्ड देन इट विल नॉट वर्क। तो दिमाग को बहुत खोल के सोचना होता है और अब कोई लिमिटेशन ना सोचें, क्योंकि रियली इन रियल लाइफ लिमिटेशन कुछ भी नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, वो सिर्फ हमारे जहन में होती हैं वो लिमिटेशंस। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं रेंट सोचती हूँ, अच्छा मैं 10 कमरों की एक बिल्डिंग लूँगी तो इतना तो उसका रेंट कम अज़ कम होगा, जितना भी मैं सोचूँ मे बी 1 लाख उसका रेंट होगा, जो भी होगा मैं वो उस, तो मुझे उसके लिए फ़ंड्स चाहिए। अब ये ना सोचें कि आपके पास वो फंड्स हैं कि नहीं हैं, आप पहले से ये सोच के बैठे हुए हैं कि मेरे पास इसमें से कुछ भी नहीं है, मैंने ये सब बनाना है, मैंने ये सब अलाइन करना है, एक सीधी लाइन में लिखना है और मैंने आज से कोशिश शुरू करनी है और उस लाइन में मैंने आगे बढ़ना है। तो मैं लिख देती हूँ कि मुझे इतना फ़ंड चाहिए, मसलन पहले साल के लिए अगर मैं ये लिख दूँ कि मुझे पहले साल में, जैसे अगर 1 लाख रुपया मेरा किराया है तो 12 लाख रुपए तो हो गए ये पक्के पक्के, यानी 1 साल का किराया तो मेरे पास होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं उनको सिक्योरिटी 3 महीनों की दे रही हूँ तो 15 लाख हो गए, तो ये तो मेरा कम अज़ कम इतना तो मेरी जेब में होना चाहिए, वरना वो मुझे बिल्डिंग से निकाल बाहर करेंगे और मेरी अकेडमी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तो ये जो है ये वो A1 वाली प्रायोरिटीज़ हैं। याद है मैंने आपको प्रायोरिटी में A1, A2, A3 बताए थे, और A1 वो हैं जो आप किसी सूरत पे नहीं छोड़ सकते, वरना आपका पूरा प्रोजेक्ट, आपका पूरा प्लान ज़ाया हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो ये A1 प्रायोरिटी है। उसके बाद आपने गैस और इलेक्ट्रिक सप्लाई सोचे थे, तो गैस कौन देता है, कहाँ से आती है, और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, उसको कैसे मैनेज करना है, वो वापडा है, सुई नॉर्दर्न है, ये ऑफिसेज हैं, और फिर उनके लिए एप्लीकेशंस देनी होती हैं। अगर आपकी बिल्डिंग में पहले से ये चीज़ें नहीं लगी हुई तो आपने एप्लीकेशंस देनी है उसकी। और तो कैन यू इमेजिन कि एक सिरे पर वो 2020 में एक बिल्डिंग है जिसमें गैस भी लगी हुई है और इलेक्ट्रिसिटी भी चल रही है और उसमें एडमिन का ऑफिस है, टीचर्स हैं, चौकीदार हैं, और उसमें एक कोर्स पढ़ाया जा रहा है, वो 2020 में बहुत बड़ी चीज़ है। यानी अगर मैं अभी बैठ के सोचूं कि मेरे पास ये चीज़ हो तो शायद मैं बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो जाऊं। लेकिन जब मैं आहिस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप उसमें नीचे आती हूं और मैं ये कहती हूं कि अच्छा जी, तो इन फंड्स के लिए सबसे पहले तो मेरे पास एक अच्छा बड़ा सा बैंक अकाउंट होना चाहिए, और मैं जाके एक अकाउंट खोलती हूँ इस एकेडमी के नाम पे या अपने नाम पे या जो भी मेरा बोर्ड है उसके नाम पे, तो मैं एक अकाउंट खोलती हूँ, फिर मैं बोर्ड की सिलेक्शन करती हूँ। ये चीज़ें तो मैं अपने टेबल पे बैठ के कर सकती हूँ ना, मैं अपनी चंद फ्रेंड्स को फ़ोन करती हूँ, जैसे हम जो हमारी फ्रेंड्स हैं, हमारे जो कुरान की बहनें हैं सारी, वो हयाल अल फलाह पे लिख देती हैं, हिट एंड फिट मोमिनात पे लिख देती हैं कि हमने ये सोचा है, हमें ये करना चाहिए, और उनको लाइक माइंडेड लोग मिल भी जाते हैं, बड़े खूबसूरत क्रिएटिव लोग उन्हें मिलते हैं जो उनको बिल्कुल उनकी तरह सोचते हैं। मतलब कम से कम 200 लोग अगर एक फोरम पे बैठे हुए हैं और वो सब 200 पाकिस्तानी ख्वातीन हैं, तो यकीनन वो ऐसे सोच एक जैसी सोच वाली ख्वातीन उनमें ज़रूर होंगी और उनके एक जैसे पैशंस होंगे और वो एक ही जैसा काम करना चाहेंगी। तो आपको एक बेहतरीन टीम इस तरह मिल सकती है अगर आप इस तरह के फोरम्स को टैप करें। तो एक दफ़ा जब आपके पास टीम आ जाए, आपका बोर्ड बन जाए, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। अब यानी इसका ये मतलब हुआ कि एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और उस बैंक में फ़ंड्स होने चाहिए। तो आप अपने एग्जिस्टिंग फ़ंड्स का जायज़ा लें, अपने फिर अपनी फ्रेंड्स को फ़ोन करें, मुख्तलिफ फोरम को टैप करें, अपने लिए एक टीम बनाएं। ये सारे काम तो आप आज कर सकती हैं ना, उठ के बैंक जाएं, पूछें, वहाँ पे कहें कि जी स्कूलों के अकाउंट कैसे होते हैं, ट्रस्ट्स कैसे होते हैं, नॉन इंटरेस्ट वाले चैरिटी अकाउंट्स कैसे होते हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को रजिस्टर कैसे किया जाता है। ये सारे काम तो आप आज कर सकते, अगर आपने ये काम आज नहीं किए तो आप एक कदम दूर रह गई अपने एम से, अपने मिशन से। अगर आपने आज ये काम कर लिए तो आप अपने मिशन से एक स्टेप करीब हो गई और आप उस अलाइनमेंट में, उस लाइन ऑफ गोल्स में एंटर हो गई हैं जो इंशाल्लाह आपको होते 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 2020 में आपके मिशन तक पहुंचा देगा। और ये चीज़ आप यकीन करें, यानी मैं आपको मैं बता नहीं सकती कि इस चीज़ की पक्की गारंटी है, यानी ये चीज़ फेल नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि 2020 में वो चीज़ ना बने जो आपने आज सोची है, लेकिन 2020 में एक चीज़ बनेगी ज़रूर, और हो सकता है कि वो उससे बेहतर हो जो आपने आज सोचा है। ये भी हो सकता है कि वो उससे कुछ कमज़ोर हो जो आपने आज सोचा है। लेकिन याद रखें कि आप एक लाइन ऑफ गोल्स में एंटर हो गई हैं, अब आप एक अलाइनमेंट में एंटर हो गई हैं, और अगर आप 2020 में उस गोल तक नहीं पहुंची, तो मे बी 2021 तक आप डेफिनेटली उस गोल तक पहुंच जाएंगी या आप उससे आगे निकल जाएंगी। लेकिन अगर आपने आज का इस्तेमाल नहीं किया, आप आज भी इसी तरह बैठी रहीं और कुढ़ती रहीं और टाइम ज़ाया करती रहीं और बुरा भला कहती रहीं अपने हालात को और अपने लोगों को और अपने बच्चों को और अपने ससुरालों को, तो अपनी तालीम को, कोई भी लिमिटेशन आप सोच लें, हैं जी, सबसे बड़ी लिमिटेशन तो हमें आजकल क्या है, मेरा वज़न क्यों इतना ज़्यादा है। यार, कम हो जाएगा वज़न, प्लीज़ आप किसी मकसद में लग जाएं, किसी काम में लग जाएं, एक तो वज़न कम हो जाएगा और दूसरा वो वज़न जो है वो फिर आपको बॉदर भी नहीं करेगा, आप किसी मकसद के हुसूल में लगे हुए होंगे। ठीक है जी, तो ये आज का सबक है, इन तस्वीरों को गौर से देखें, और जिस तरह के आपने देखा होगा कि हमारी अच्छी अच्छी दोस्तें हैं जो हया अल फलाह पे और हिट एंड फिट पे शेयर कर रही हैं आइडियाज़, डू शेयर योर आइडियाज़, वक्त ज़ाया ना करें, ये मैं हर वक्त कहती हूँ, वक्त ज़ाया ना करें इससे पहले कि वक्त आपको ज़ाया करना शुरू कर दे। तो इंसान बहुत कीमती चीज़ है जिसे कभी नहीं ज़ाया होना चाहिए। तो कल मिलने के वादे के साथ इंशाल्लाह तस्वीरों का गौर से मुताला करें, इनको समझें, और लाइक माइंडेड लोगों की सर्च के लिए हमेशा याद रखें हया अल फलाह और हिट एंड फिट जो हैं वो आपके लिए खुले हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।